हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्कान के ओर से केंद्र स्कान केंद्र में पधारे हुए आज बृहस्पतिवार के शाम के सत्संग में आप सब महानुभावों का स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से जो 7 दिन के भागवत कथा में प्रेमी सत्संगी पधार रहे थे और आज यहाँ आने के लिए अनुमति उन्होंने यहाँ आने के लिए जो हमने विनती की थी स्वीकार करके यहाँ पधारे हैं, उनका विशेष रूप से स्वागत करते हैं। 7 दिन तो भागवत की कथा जो की थी वो बहुत संक्षेप में थी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के 500-700 से अधिक केंद्रों में प्रतिदिन 1 घंटा भागवत का जो सत्संग होता है वो 1 श्लोक के ऊपर होता है। तो ऐसा एक सैंपल आज अपन 40-45 मिनट दसम स्कंद श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता मुखमंडल दसम स्कंद श्रीमद् भागवत कहलाता है। उसके पहले अध्याय में भागवत को सुनने वाले महाराज परीक्षित की उत्कंठा उत्साह और उसका जो निश्चय है उसका आज हम श्रवण करेंगे। इससे हमारा उद्देश्य ये है कि जीवन में जब हम हरि कथा सुने भगवत की भागवत सुने भगवत गीता सुने तो सुनाने वाले का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके गुण होना चाहिए, सुनने वाले में कितनी उत्कंठा होनी चाहिए और जो कुछ हम सुन रहे हैं उससे क्या लाभ है, ये 3 भाव आज के श्लोक में हैं। कुर्सी आपकी यहाँ लाएंगे, दरवाजे से लोग आते जाते रहेंगे, डिस्टर्बेंस रहा रहेंगे। हीरालाल जी आपका कुर्सी यहाँ लेके आई, ए दादा का कुर्सी यहाँ रखो, क्यों गेट है वहां से आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। तो ये श्लोक यहाँ दीवार पे कहाँ गया श्लोक भाई, इस श्लोक को देखिए, आप हमारे साथ इस श्लोक को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। इसका अर्थ नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत के ये ब्रह्म शब्द ऐसे हैं कि आपके हृदय को पवित्र करेंगे। इसकी जो ध्वनि है वो एक अलौकिक आनंद का, यहाँ यहाँ इधर 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 तो इसका आप श्रवण कीजिए। निवर्त तृष्यैर उपगीयमाना भवौषधाश्रोत मनोभिरामा उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान व्रजेत विना पशु घना। एक बार और आवृत्ति कीजिए। निवर्त तृष्य उपगीयमाना भवौषधाश्रोत मनोभिरामा
सदाश्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान व्रजेत विना पशोभना
एक बार और आवृत्ति कीजिए
निवर्ततृशयोपगीयमाना भावौषधि श्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा मान व्रजे तबिना पशु घना
ये श्लोक परीक्षित महाराज के मुख से उच्चारण हुआ है और सुखदेव गोस्वामी को संबोधित कर रहे हैं। पहला शब्द है निवृत्त तृष्णा। निवृत्त का अर्थ होता है किसी चीज से आदमी फारिग हो जाए, फ्री फ्रॉम, और तृष्णा का अर्थ होता है तृष्णा, तृष्णा हैंकरिंग, कुछ प्राप्त करने की दुनिया में लालसा होती है उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा से जो निवृत्त हो, असल में ये निवृत्त शब्द जो लोग बहुत पुराने हैं उनको मालूम है, निवृत्त कर होने का मतलब है कि सुबह उठने के बाद जो आदमी नित्य क्रिया से निवृत्त होना उसको कहते हैं नित्य क्रिया से निवृत्त होना। तो कोई भी जब शौचालय में जाता है पीछे मुड़ के नहीं देखता है जो निकला जाम छूटी, ये निवृत्त का अर्थ ही है। जिसने संसार के भोगों को ऐसे मलवत त्याग दिया है उसको देखता भी नहीं है। ये निवृत्त शब्द की गंभीर विषय ये है कि उसको देखता भी नहीं है दोबारा, उसमें कोई आसक्ति आसक्ति क्या, उसको देखने की भी इच्छा नहीं है। निवृत्त उसको कहते हैं कि भाई नित्य क्रिया से निवृत्त होना, तो निवृत्त शब्द वहां से निकला हुआ है। तृष्णा, मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा न मरे, शरीर खत्म होता है लेकिन तृष्णाएं खत्म नहीं होती है, ये तृष्णाएं खत्म नहीं होती और ये तृष्णाएं हमारे को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो तृष्णा का मतलब हैंकरिंग, अंग्रेजी में तो हैंकरिंग लिखते हैं तृष्णा को, यहां श्री प्रभुपाद जी तृष्णा को लिखते हैं लस्ट आर मटेरियल एक्टिविटीज, ये कुछ चीज प्राप्त करने की कामना है, तीव्र कामना है जो कभी पूरी नहीं होने वाली हो, इसको तृष्णा कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए ये दो शब्द, सुखदेव गोस्वामी के गुण है ये कि उनको संसार में किसी चीज के लिए भी कोई इच्छा नहीं है, सब चीजों को मलवत त्याग दिया है संसार के, ये सुखदेव गोस्वामी की क्वालिफिकेशन है। अथवा जो भगवान की कथा करे उसका पहला गुण ये होना चाहिए निवर्त तृष्णा, उसको संसार में किसी चीज के भोग की लालसा न हो, कुछ प्राप्त करना उसका उद्देश्य न हो, उसका उद्देश्य क्या हो, उपगीयमानाद। गीयमानाद का मतलब गाता है, उप का मतलब संसार से ऊपर उठ के भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता है। वो क्यों गाता है बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए गाता, अथवा भगवान की गोद में बैठ के भगवान के गुण गाता है, संसार से उसको कुछ लेना नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी की जीवनी तो जिन्होंने पढ़ी है उनको मालूम है कि वो संसार में किसी चीज से लिप्त तो हुए ही नहीं कभी, वो तो दिगंबर वेश में घूमते थे, दिशाएं उनका वेश था, और उसको तो स्त्री पुरुष में क्या अंतर है यहां तक भी मालूम नहीं था। वो तो केवल भगवान के ध्यान में मगन थे और जब भागवत पढ़ ली तो फिर भागवत के ही श्रवण वर्णन में उनका जीवन पूरा लग गया। तो उपगीय मानाया का मतलब वो गाते काय के लिए हैं, भागवत कथा क्यों करते हैं, कृष्ण प्रीति अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो तो भगवान को ही गुण गा के सुनाते हैं और प्रसाद के रूप में सुनने वालों को मिलता है तब उनका कल्याण होता है। मानो सूरदास जी जब आंखें नहीं है कृष्ण गीत गाते थे तो किसके किसके लिए गाते थे, भगवान के लिए गाते थे। तो गाते किसके लिए, कथा किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी भी वेद जो वैदिक हमारा प्रक्रिया है उसमें कहते हैं भागवत का मैं पाठ कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, इस पाठ को मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। तो कथा सुनाने वाला निवृत्त तृषई होना चाहिए और जो भगवान का गुणगान करता है तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और जिससे सीखा है उस परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। उपगीय मानाया का मतलब जो शिक्षा परंपरागत आई है उसके अंतर्गत। परंपरा का अर्थ होता है कि जैसे भगवान नारायण ने साक्षात ब्रह्मा जी को गीत भागवत के चार श्लोक सुनाए, ब्रह्मा जी ने अपने बेटे नारद को सुनाए, नारद जी ने व्यास को सुनाए, व्यास जी ने सुखदेव को सिखाए, तो सुखदेव गोस्वामी के बाद ये परंपरा में व्यास से गुरु और शिष्य, गुरु ने शिष्य को सिखाया, तो ये परंपरा से आता है। ये परंपरा का अर्थ ऐसे है कि वो परंपरा देख रही है कि हम उनके आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हैं कि अपने मन से कर रहे हैं। इसलिए परंपरा ट्रांसपेरेंट होती है जैसे चश्मा होता है ना, तो हमारे को देख रहे हम क्या कर रहे हैं और हमारे माध्यम से सुनने वाले सामने भगवान को देख रहे हैं, हम बीच में बाधा नहीं बनते हैं उसके, सुनाने वाला सुनने वाले और भगवान के बीच में रुकावट नहीं बनता है। ये बहुत गंभीर विषय है। चश्मा समझे, चश्मा गिलास होता है, नजर कम होती है ना, गिलास कहते हैं, गिलास में कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब गिलास नहीं है तो सामने की चीज नहीं दिखाई देती, सामने देखो सामने कृष्ण है, लेकिन अगर नजर कमजोर है तो नहीं दिखता है, लेकिन चश्मा लगा लो तो दिखता है। तो चश्मे के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, चश्मे के माध्यम से सामने की चीज दिखती है। तो ऐसे कथा करने वाला चश्मा होना चाहिए जिसके माध्यम से हमको भगवान दिखना चाहिए और भगवान को हटा के वो अपनी ही बात करने लग जाए तो सुनने वालों का उद्धार नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। जो स्पीकर, जो कथा करने वाला हो वो बिल्कुल आर पार दिखने वाला हो, जिसके माध्यम से, क्यों कथा किसकी कर रहा है, भागवत की, भागवत क्या है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है, तो भगवान दिखना चाहिए ना उसके माध्यम से। तो वो तो माध्यम है, चश्मा है, जिसके द्वारा हमारी नजर में जो नहीं आता है उसको वो दिखा देता है। निवर्त तृषय उपगीय माना, अच्छा वो जो गाता है उससे लाभ क्या है, अगर हम उसको, वो क्या गाता है, भाव औषधि। औषधि किसको बोलते हैं, दवाई को। असल में औषधि शब्द का अर्थ है जो रोग को नाश करे और स्वस्थ को स्वस्थ का पोषण करे, दो काम करती है, जो चीज कम है उसको पूरा करती है और जो खराब है उसको निकालती है, उसको औषधि कहते हैं। ये दो है, धति रोगान, रोग को नाश करती है और स्वस्थ को पौष्टिक करती है, उसको औषधि बोलते हैं। तो जो वो उपगीय माना जो बैठ के वो कथा करता है, वो कथा क्या है, वो नीचे उस कथा का नाम लिखा है उत्तम श्लोक गुणानुवादान। उत्तम श्लोक मतलब जिसमें वेदों से जिसकी प्रार्थना की जाए, गुणानुवादान उसके गुणों का वर्णन करता है, लीला रूप का वर्णन करता है। तो वो जो वर्णन है वो क्या, औषधि है। किसकी औषधि है, भव रोग की। संसार को कहते हैं भव सागर और जन्म मृत्यु को कहते हैं भव रोग। बार बार जन्म लेना फिर मरना, इसको कहते हैं भव रोग। और इसकी दवाई क्या है? इसकी दवाई है उत्तम श्लोक गुणानुवादान। इसकी दवाई है भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण वर्णन करना। ये क्या है? दवाई है। भगवान का नाम दवाई है, नाम औषधि है। सर्व दुखांडा औखद नाम, औषधि सारे दुखों की दवाई है। ये कथा दवाई है, देने वाला डॉक्टर है। तो ले कैसे? क्या पीनी है दवाई को? क्या सुई लगेगी? इस दवाई को पाने का माध्यम क्या है? श्रोत, कानों के द्वारा ली जाती है। कान के प्यालों के द्वारा इस भगवान की कथा के अमृत को पिया जाता है। तो लेने का साधन क्या है? कान। कानों के प्यालों से भर भर के अमृत पिया जाता है। पीबत्तम भागवतम, पीबत्त पियो, रसामल रसायन, ये रस है। वेद के पके हुए फल का रस है। भावक आप जो भावना भगवान की जिसमें ज्यादा बढ़ गई है भगवान की कृपा से, इसको पियो। कैसे पिए? बोला कानों के द्वारा पियो। वैसे भी शास्त्र कहता है भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है, श्रोत इक्षितम, इक्षित का मतलब आंख होता है। भगवान को देखने की आंख कान है, उसके बारे में सुनेंगे तब भगवान अपने हृदय में दिखाई देगा। आंखों से दिखाई देने से पहचान नहीं होगी, तो कानों से भगवान को देखा जाता है। एक आंखों से सूरदास मंदिर के अंदर आया, बहुत भीड़ थी, लोगों ने कहा जब देख नहीं सकते, आंखें नहीं है, तो यहाँ काय के लिए भीड़ करते? बेचारा कहता है मैं नहीं देख सकता हूँ, भगवान तो देखेगा कि मैं उसके दरबार में आया हूँ। तो असल में भगवान देख ले के हम उसके चरणों में आए हैं तब हमारी हाजिरी कबूल होती है। हम देख के रोज देख के जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो देख ले तो हमारा जीवन बदल जाए। निवर्त त्रिशय उपगीय मानाय भव औषधि श्रोत। अब जब ये हम सुनेंगे तो ये दवाई कड़वी है। बोला मनोभी रामा, मन को बड़ा आनंद देती है, मन को शांति और सुख देती है। ये दवाई हृदय को गदगद करने वाली है, बड़ा आनंद देती है ये दवाई। भव रोग की दवाई है, बड़ा आनंद देती है। और फिर परीक्षित महाराज को ऐसे लगा कि कुछ लोग कभी इसको सुनने के लिए आगे आएंगे ही नहीं। तो अंतिम लाइन में कहा, पुमान ऐसे मानव वृद्धेत, उनको छोड़कर, ऐसे इनको छोड़ दे, कौन से? विना पशु घनात। पशु घनात शब्द का अर्थ होता है कसाई, कसाईयों को छोड़कर। बाकी कौन ऐसा होगा जो इस भव रोग की बहुमूल्य औषधि को कानों के द्वारा निवृत्त त्रिशयी महात्मा से नहीं सुनेगा? ऐसा कौन होगा? केवल कसाई नहीं सुनता है। कसाई का एक अर्थ है जो आत्मघाती है, अपना, जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं करना चाहता है, वो अपना ही आत्महत्या कर रहा है, वो अपने लिए ही कसाई है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मा के विषय में जानने को तैयार नहीं है, तो वो कभी भी इसको सुनने में रुचि नहीं रखेंगे। और दूसरा इसका अर्थ श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि वेदों के अंदर यज्ञ किया जाता है जिसमें पशु की बलि दी जाती है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो वो भी पशु घनात है। पशु की बलि देते हैं लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए, जहां जाने के बाद सुख भोगने के बाद फिर वापस संसार में आना पड़ता है। तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम कीन पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रैधर्मा अनुपना काम कामा गतागतम। ये जो पूजा करके स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग का सुख भोगने के बाद जब समाप्त हो गया, क्रेडिट पूरा हो गया, तो वहां से वापस धरती पे भेजा जाता है, वहां सदा नहीं रह सकते। श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भारत में गीता भागवत की कथा का कहीं सुनने में आ जाए तो हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये भारत भूमि की महानता है कि लोगों को बहुत आस्था और श्रद्धा है भगवान की कथा सुनने के लिए। और बहुत सी कथाएं होती हैं, लेकिन एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। जब ये दवाई है और सुनने के बाद हृदय को पवित्र होना चाहिए, तो लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता। तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो निवृत्त तृष्णी नहीं है, उसकी अपनी बहुत कामनाएं हैं उस कथा से जुड़ी हुई। वो कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करता है, उसका अपना उसमें कोई उद्देश्य है, इसलिए वो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि लाखों लोग कथाओं में जाते हैं, लेकिन जैसे हैं वैसे ही जीवन उनका हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखिए, खांसी हो जुकाम हो तो आदमी कोई भी गोली लेके काम चला सकता है, लेकिन दिल का ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर की अच्छी तरह से चकास करनी पड़ती है, दो चार से पूछना पड़ता है, भाई इधर से जाते हैं इलाज करके वापस सब ठीक ठाक होते हैं ना, हम जाएं इसके पास। तो असल में आध्यात्मिक रास्ते पे चलना दिल का ऑपरेशन कराना है। इस वक्त हमारी दिल में बहुत सी माया की मूर्तियां जमी हुई हैं, धन की मूर्तियां, पुत्र परिवार की मूर्तियां, संसार के भोगों की बहुत सारी अंदर आकृतियां बनी हुई हैं। सबके हृदय में आप अंदर जाके देखो तो कितनी मूर्तियां अंदर बनी हुई है, पूरी सिनेमा की रील चलती है अंदर, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। और ये कथा करने वाले डॉक्टर का काम है कि भगवान का गुण और विशेष रूप से भगवान के दयालुता का गुण, भक्त वत्सलता का गुण, कितना बड़ा भगवान दयालु है कि भगवान होते हुए भी अपने भक्त को ऊपर बिठा दिया, अर्जुन को स्वयं नीचे बैठ गए और घोड़े हांक रहे। दुनिया के त्रिलोकी को सोए सोए चलाने वाले वो अर्जुन के घोड़ों की बागडोर संभाली है और उसको चला रहे हैं, अर्जुन को ऊपर बिठाया स्वयं नीचे बैठ गए। इससे ज्यादा और कौन दयालु संसार में हो सकता है। अपने भक्त के लिए ड्राइवर का काम कर ले, कितनी बड़ी भगवान की ये करुणा है, दया है अपने भक्तों के प्रति। ऐसे जब भक्तों के गुण सुनेंगे तो हृदय पिघल जाएगा, द्रवित हो जाएगा, तो जितनी संसार की मूर्तियां हैं वो सारी उसमें से मेल्ट होके निकल जाएंगी। तब कथा के अंदर भगवान राधा गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ये है हृदय का ऑपरेशन। जब साधु संत प्रभुपाद जी जब कथा कर रहे थे तो पाश्चात्य देश के लोग, जिनको तो गीता भागवत के नाम से भी परिचित नहीं थे, और प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं कि उनके अंदर तो संसार के सारे ही बुराइयां थी, लेकिन कथा सुनने से, भगवान के करुणा और प्रेम का वर्णन सुनने से उनके हृदय से मांसाहार का भावना चली गई, व्यभिचार का विचार चला गया, नशा करने का नाम नहीं उनके पास रह गया। सिगरेट तो क्या, बहुत पहले तो वो चर्च गांजा पीते थे, वो अब वो चाय पीना छोड़ दिया, तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन साक्षात दिखा, ये उनका हृदय बदल गया, उनका जीवन में परिवर्तन आ गया। और वैसे कहते हैं साधु से मिले तो दो चीजें हो तो समझ लो कि साधु का स्तर निवृत्त तृष्णी का है। पहले समय बीत जाए पता नहीं लगे, आधा घंटा हुआ कि घंटा हुआ पता नहीं लगे, और दूसरा जब हम साधु से मिलके वापस आए तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हम कुछ अलग ही बने तो समझो कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया, नहीं तो जैसे गए थे वैसे आए तो क्या हुआ। तो साधु की परिभाषा है जिसके पास बैठे तो काल के बीतने का पता नहीं चले, समय बीत जाए पता नहीं चले, और जब वापस लौट के आए तो जीवन में परिवर्तन हो। और कैसा परिवर्तन हो? भगवत भक्ति का परिवर्तन हो, भगवान को मिलने की लालसा दिल में हो, भगवान से प्रेम करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, और भगवान को पाने के लिए थोड़ी सी तड़प दिल में आ जाए। अब तो संसार को पाने की तड़प तो सबके पास अपने पास है, वो जरा बदल के भगवान को पाने के रास्ते में जाए, और इसमें कभी घाटा नहीं होता, ध्यान रखना। श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी मांगने गया था और कृष्ण भी मांगने गया था और अर्जुन भी मांगने गया था। दुर्योधन द्वारका में पहले पहुंचा और दुर्योधन की बेटी भगवान श्री कृष्ण के बेटे को ब्याही हुई है। जामवंती नंदन सांबा का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से, लक्ष्मण है मेरे ख्याल में, उससे उसके साथ हुआ, तो वो संबंध ही है भगवान का, और भगवान के पास सहायता लेने के लिए गया है कुरुक्षेत्र युद्ध में, भगवान हमारी सहायता करो। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पति है, वो भी रिश्तेदार है। अर्जुन थोड़ा देर से आया, दुर्योधन पहले पहुंच गया, भगवान आंखें बंद करके सोए थे, लामानुष नींद में है, एक बहुत सुंदर सोफा भगवान के सिराने रखा हुआ था, दुर्योधन जाके उसके ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन आए भगवान के चरणों के पास बैठ गए पलंग के ऊपर, भगवान ने आंख खोली, पहले अर्जुन को देखा, पार्थ आप कैसे पधारे? दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं द्वारकाधीश। तो भगवान ने ऐसे टेढ़ी आंख से दुर्योधन को देखा, ओ युवराज आप भी पधारे हैं। जब भगवान ने टेढ़ी आंख से दुर्योधन को देखा तभी सब युद्ध का निर्णय हो चुका था, टेढ़ी आंख से देखना। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले 15 एक दिन भगवान का दर्शन कोई नहीं करता है, बंद होता है मंदिर। स्नान यात्रा होती है गर्मी का मौसम में, भगवान की स्नान यात्रा होती है, उसके बाद कहते हैं ऐसे है कि भगवान को औषधियां दे रहे हैं, स्वस्थ ठीक नहीं है, लेकिन असल में उस वक्त में कलर करके तैयार करते हैं भगवान को रथ यात्रा के लिए। तो एक दिन रथ यात्रा से पहले दर्शन खुलते हैं, उसको नवयौवन दर्शन कहते हैं। उस दिन सारे देवता भगवान का दर्शन करने आते हैं, पहले देवता, तो एक बार यमराज जी सबसे लास्ट में आए तो गरुड़ स्तंभ के पास एक चिड़िया को देखा, तो यमराज ने ऐसे टेढ़ी आंख से चिड़िया को देखा, चिड़िया डर गई, यमराज तो अंदर चले गए जगन्नाथ, चिड़िया ने थर थर कांपते हुए कहा गरुड़ जी आप तो पक्षी राज हैं, यमराज ने मुझे टेढ़ी आंख से देखा इसका मतलब मेरे दिन पूरे हो गए, अब ये वापस आएंगे, मुझे यहां से कहीं ले चलो। गरुड़ ने उठाया चिड़िया को, हिमालय में एक जाके गुफा के अंदर केव के अंदर जाके छोड़ के वापस भागते हुए आया। अंदर से यमराज भगवान को दर्शन करके प्रणाम करके वापस लौटे तो गरुड़ को पसीने में देखा, बोला गरुड़ राज वैनित्य नंदन, क्यों भाई पसीना पसीना आपको? बोला क्षमा करना मैं तो पक्षी राज हूं, वो बेचारी चिड़िया को आपने टेढ़ी आंख से देखा था घबरा गई,
मैं उसको यहां से उठा के हिमालय की गुफा में छोड़ दिया। यमराज कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या मेरी थी। मैं जब मेरी ऑफिस से निकला तो इस चिड़िया की मृत्यु लिखी हुई थी हिमालय के एक कंदरा के अंदर बिल्ले के मारने से होनी चली, और इसको यहां देख के मैं परेशान हो गया कि ये बेचारी कैसे उड़ के वहां जाएगी। और मैंने जगन्नाथ जी को तो कंप्लेन किया कि ऐसा कैसा आपका नेम बना हुआ है कि ये चिड़िया यहाँ बैठी है, इसको अभी आधे घंटे में एक बिल्ला खाएगा आके और वो हिमालय की गुफा में खाएगा, कैसे यहाँ पहुंचेगी। भगवान केवल मुस्कुराए, मुझे मालूम नहीं कि गरुड़ जी आपने काम कर दिया। तो टेढ़ी आंख से देखने का अर्थ होता है कि उसका टाइम पूरा हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बताइए आप दोनों कैसे पधारे। तो महाभारत युद्ध तो अनिवार्य है, होगा, कोई रोक नहीं सकता है, हम आपसे सहायता लेने के लिए आए। अच्छा तो ऐसे है कि एक अक्षौणी हमारी चतुरंगनी सेना जिसके अंदर रथ हाथी घोड़े पैदल सब, और कृतवर्मा उसका सेनापति है, और एक तरफ मैं अकेला हूँ, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन छोटा है, पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को, देखा भी मैंने पहले अर्जुन को, इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। अब तो बेचारा दुर्योधन पसीना पसीना हो गया, कोई लड़ाई हो रही है तो सेना चाहिए या एक आदमी चाहिए जो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा। बहुत चिंतित होके अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सोचा, बोला कन्हैया द्वारकाधीश आप हमारे साथ रहिए। दुर्योधन ने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद, सेना भेज दीजिएगा। उसने बोला बहुत अच्छा हुआ। अब क्या अर्जुन ने क्या मांग लिया, कृष्ण को मांग लिया। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ, जिसने कृष्ण को मांगा वो तो विजयी हुआ, जिसने कृष्ण से मांगा उसका सब कुछ समाप्त हो गया। तो परिवर्तन जीवन में ये आना चाहिए कि कृष्ण को मांगने की अभिलाषा हो जाए तो जीवन में सफलता हो जाएगी। और संसार में संसार के मांगने की भावना रही तो सब कुछ संसार तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो संसार हमारे किस काम का रहेगा। तो मांगना क्या चाहिए, भगवान को मांगना चाहिए जीवन में, उसको मांगने से सब कुछ मिल जाता है। तो ये जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का होना चाहिए। मानव जन्म बहुत दुर्लभ मिला है, इसलिए निवृत्त तृष्णा के ऊपर बहुत गंभीर विषय ये है। और सनातन गोस्वामी पाद एक मुख्यमंत्री थे बंगाल के, नवाब हुसैन शाह के राज के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास चल के गए और उनको अपना शिष्य बनाया। अब देखिए कि भक्त के रूप में भगवान अपने भक्तों के पास चले जाते हैं, और उनको ऐसा उनके मन में परिवर्तन आया, उन्होंने वो मुख्यमंत्री के पद को त्याग दिया और वहां से पैदल चलते हुए वृंदावन आए। और रास्ते में बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिले। 2 महीने महाप्रभु ने उनको भगवान को प्राप्त करने के साधन बताए। पहला साधन बताया भगवान का ज्ञान, अगर भगवान के बारे में जानकारी होगी तो भगवान से संबंध स्थापित होगा, जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो सेवा करने की भावना मन में उत्पन्न होगी। भाई जो आपका संबंधी होते हैं उसकी सेवा करते हो ना, भाई संबंध होगा तो किसी की सेवा करेंगे। तो पहले संबंध हो तो फिर सेवा होगी, और सेवा करेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा। ये 3 सिद्धांत है, भगवत संबंध, भगवत संबंधी ज्ञान, भगवान की सेवा में तलीन होना लगना, तब भगवान के प्रेम की प्राप्ति होना। ये 3 शब्द हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, और ये जीवन का लक्ष्य है मानव जीवन। और ये 2 महीने बैठकर बनारस काशी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखाए। पहला मंदिर आप जब कभी वृंदावन जाते हैं, जो पहला मंदिर वृंदावन में बना, राधा मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन का मंदिर उसका नाम है। उस मंदिर के ठाकुर जी सनातन गोस्वामी उस ठाकुर जी की पूजा करते थे। वो ठाकुर जी, वो मदन मोहन जी इस वक्त किसी को देखने हैं तो करौली में है, वही ठाकुर करौली राजस्थान में है। वो ठाकुर जी मथुरा में एक चतुर्वेदी के घर में थे। सनातन गोस्वामी भिक्षा लेने जाते थे, ठाकुर जी को देखा, मन में आया कि मेरे पास हो तो मैं इनकी सेवा करूं। ठाकुर जी ने राज्य चतुर्वेदी को कहा कि अब मेरे को बाबा को दे दो। तो ठाकुर जी आ गए वृंदावन में। बाबा के पास तो कुछ नहीं, तो था ही कुछ नहीं, राजपाट छोड़ के आए तो भिक्षा, तो आटा ले आए, ऐसे गोल गोल बनाए जमुना के पानी में, फिर आग में सेक दें और सेक के भगवान को भोग लगाएं। मदन मोहन ने कहा, बाबा थोड़ा नमक तो डालो, अंदर जाता नहीं है, थोड़ा नमक तो डालो। बोला, आज नमक मांगता है, कल बोलेगा चीनी, फिर बोलेगा हलवा, मैं कहां से लाऊंगा, मैं तो सब छोड़ गया। अगर आपको ऐसा भोग खाना है तो अपना प्रबंध करो, अपना प्रबंध स्वयं करो। तो एक कपूर पंजाब का बड़ा जहाज भर के आगरा जा रहा था, नदी में जहाज फंस गया और ऊपर बाबा जी के वहां से कुटिया से दीप का रोशनी आया, बाबा को प्रणाम किया, बोला महाराज जहाज भरा हुआ सामान का फंस गया है और चोर लाटू लुटेरे यहाँ बहुत है। बोला मदन मोहन को प्रणाम करो। मदन मोहन को प्रणाम किया, हवा का झोंका आया, जहाज निकला, आगरा में बहुत पैसा मिला, वापस मुलौट के आया। बोला आपने जहाज भी बचाया, धन भी बहुत मिला, अब मैं सेवा करूं। बोला बनाओ मंदिर, और मदन मोहन का पहला मंदिर बना। उसका शिखर के ऊपर सोने का कलश, वो आगरा से दिखता था चांद की रात को, तो उसको बाद में तोड़ दिया था किसी वक्त में औरंगजेब ने, तो अभी तक मॉन्यूमेंट में वो मंदिर पड़ा है। तो पहला मंदिर भी उनके द्वारा ये स्थापित मदन मोहन जी का। उन्होंने एक पुस्तक के अंदर लिखा है कि दूध बड़ा पौष्टिक होता है, बच्चा पीता है, मां भगवान ने पहले बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर दी, जन्म लेने से पहले ही मां के स्तन में दूध भर देता है, और दूध बच्चे के लिए बहुत पौष्टिक पदार्थ है, बहुत पौष्टिक पदार्थ है। अभी तो कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, तो फिर भगवान खाए के लिए दूध की जगह के और कोई बना नहीं था, जूस बना के डाल देता, उसमें क्या है? अभी जो बीमारी सब, यार जूस पीनी चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, दूध में फिर, तो फिर भगवान ने इतना ज्यादा प्रबंध दूध का क्यों किया, और कुछ ही बना के भेज देते, करेले का जूस घर में कोई भी नहीं पीता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो सनातन गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है वृद्ध भागवत अमृत, वृद्ध भागवत अमृत। और वो पुस्तक परीक्षित महात्म महाराज बोल रहे हैं और उनकी माँ उत्तरा पूछ रही है, तो भागवत के और गंभीर विषयों का रहस्य उन्होंने लिखा है। वो लिखते, दूध बड़ा पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन सर्प छांप का विष सामूस माँ उसमें डाल दे और विष गिरा दे तो वो दूध पीने वाले के लिए घातक हो जाएगा। सही, ठीक है, ऐसे भागवत अमृत है, लेकिन बताने वाला अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखने वाला है, स्वार्थ अपना उसका है, तो सुनने वाले को भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, उसका हित नहीं होगा। श्लोक लिखा ये पद्म पुराण दूसरी एक बहुत बड़ी महापुराण है, उसका ये श्लोक है। ये श्लोक एज इट इज मैं उसको पढ़ता हूं तो आपको ये बात हृदय में उतरनी चाहिए कि क्या लिखा है। अवैष्णवा मुख उद्ग्रहणम, अवैष्णवा मुख उद्ग्रहणम। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु को प्रेम करने वाले। एक गलत धारणा हमारे पास क्या है, वैष्णव का मतलब सब्जी खाने वाला, ये तो बंदर भी होता है, वो वैष्णव थोड़ी है, हाथी भी है जो केवल सब्जी खाता है। लोग कहते हैं सब्जी नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, हाथी आज तक पतला नहीं हुआ, वैसे का वैसे अच्छा शक्तिशाली है। और हार्स में हार्स पावर है आज भी, वो भी बेचारा केवल जव खाता है, घास खाता है, उसमें भी हार्स पावर है। आजकल भी सब गाड़ियों को हार्स पावर ही बोलते हैं, नहीं लाइन पावर किसी का नाम नहीं है, चाहे वो मांस खाता है फिर भी उसके पावर से कुछ भी नहीं चलता है, सभी हार्स पावर से चलते हैं। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि जितने भी पशु जो मांस खाते हैं वो सारे के सारे पशु बेचारे घास खाते हैं, जिनको मानव खाता है वो सारे घास खाने वाले पशुओं को ही खाता है। तो बताइए कि सीधा सब्जी खाना ठीक है या पहले सब्जी कोई पशु खाए फिर उस पशु को खाना ठीक है? तो रिकंडीशन हो गया, सेकंड हैंड हो गया। नहीं, जब रिकंडीशन और सेकंड हैंड हो गया ना, फर्स्ट हैंड तो नहीं हुआ भाई। अगर अगर जिगर है तो शेर को मार के जाके खाओ, कोई खाता है क्या शेर को? अरे शेरनी का दूध भी किसी को हाथ नहीं आता है, मालूम है? कभी देखा ही, सुना ही नहीं है। एक ब्रज के भक्त ने लिखा है, राधा कृष्ण ललिता विशाखा, जो भगवान राधा की सखियां हैं, उनकी उपासना करना जैसे शेरनी को दूध पीनो। मतलब वो जो राधा कृष्ण और उनके सखियों का उपासना करे तो मानो शेरनी का दूध पी रहा है। तो शेरनी का दूध या तो सोने के बर्तन में रह सकता है, नहीं तो शेर के बच्चे के पेट में पकता है और कहीं नहीं रहता। अब सोने का बर्तन तो है नहीं, शेरनी का दूध रखना है तो सोने के बर्तन में रखा जाता है। तो सोने का बर्तन ही नहीं है तो शेरनी का दूध हमने तो देखा ही नहीं है कभी। एक डॉक्टर ने मुझे कहा, जो वेटनरी था, बोला हाँ शेर के बच्चे को शेरनी दूध पिलाती है, हमने देखा है, लेकिन दूध है तो वो दूध तो शेर के बच्चे, तो भगवान के भक्त शेर के बच्चे होते हैं, वो इस उपासना को करने के अधिकारी, उसको वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव उसको बोलते हैं जो भगवान विष्णु के उपासक हैं। सब्जी खाने वाले को वैष्णव नहीं कहते, वो तो शाकाहारी हो गया। तो वैष्णव अवैष्णव मतलब जो भगवान, वैसे विष्णु का एक अर्थ होता है सर्व जगह, जो सर्वव्यापक को विष्णु कहते हैं, विष्णु जो सब जगह हो उसको विष्णु कहते हैं। एक विष्णु का अर्थ ये है सर्वव्यापक, हर जगह कोने कोने में कण कण में जो व्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। अवैष्णव मुख उद्ग्रणम, अगर उससे मुख से सुना जाए क्या, शृणवम नहीं सुनना एव कर्तव्यम, उससे नहीं सुनना चाहिए। क्यों? पूतम हरि कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत है, लेकिन उसके मुख से सुनने से वो पवित्र कथा जो है उसमें क्या हो जाता है, सर्व सर्प उच्चिष्टम यथा पयो, जैसे दूध में सांप ने विष डाल दिया है ऐसे उसका प्रभाव होता है। तो ये श्लोक भगवान की कथा अमृत है, रोज सुनना चाहिए, लेकिन ऐसे संग में सुनना चाहिए जिसमें संसारी भोग वासना न हो, भगवान की प्राप्त होने की इच्छा हो। वैसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हुई है? अभी तक सोचते हैं तो नहीं हुई। क्या भाई ऐसे चला दिया क्या? हाँ, अरे कृष्णा ये भगाने के लिए चला है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्यों भाई इसको थोड़ा विश्राम दो। हरि बोल।
तो आज के श्लोक में ये हमको सीखने को मिलता है कि भगवान की कथा अमृत है, उसको नित्य पान करना चाहिए। वो भव रोग की औषधि है, जन्म मृत्यु से मुक्त करा देती है। देखिए, हमको अभी तक जन्म मृत्यु के दुख का भी अनुभव नहीं है जीवन में, कि जन्म का दुख कितना होता है और मृत्यु कितना पीड़ादायी होती है। इसका अभी तक हमने कभी विचार किया नहीं है। चार चीजें जो है इसका इलाज कहीं दुनिया में नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये ज्ञान के अंतर्गत भगवद गीता में आता है। ज्ञान इसको कहते हैं कि लोगों को पता लग जाए कि जन्म दुखदायी है। इसको ऐसे मैं समझाऊं तो समझ में आएगा। किसी को प्लास्टिक की बैग में बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद, फिर उसको गटर के अंदर मलमूत्र के बीच में टांग दिया जाए, ये कोई रहना पसंद करेगा? हाँ, प्लास्टिक की बैसल में बंद, थैली में बंद, मलमूत्र के बीच में, हंसने की कहानी तो बताता हूं आपको। एक राजा की पत्नी उसके राजमहल के सामने बहुत अच्छे सोने के आभूषण बनाने वाले का घर था, तो छत के ऊपर सोने के आभूषण बनाने वाला खड़ा था। दासी को बुलाओ, इसको बुलाओ, मुझे कुछ सोने के आभूषण बनाने हैं, ऑर्नामेंट्स। वो आया तो उससे प्रेम की बातें करने लग गई रानी। राजा तो चला गया ऑफिस में, अभी तो राजा आने वाला है नहीं, तो प्रेम की बातें कर रही। उस दिन राजा अचानक दरवाजा खटखटाया और आवाज आया कि महाराज आ रहे हैं। तो अचानक आ गए महाराज। अब तो ये इसको मंगाना हो तो राजा को कहना चाहिए वो बना के दे, सीधा घर में मंगाना ठीक नहीं। डर लगा उसको, अब क्या करें, बोला कहाँ छुपे। टॉयलेट पुराने जमाने के जो थे, बड़ा खड्डा होता था नीचे, ऊपर गोल होल होता था और पीछे से उसको सफाई होती। बोला इसके पीछे जाके इसके अंदर बैठ जा, यहाँ तो महाराज जाएगा नहीं। उस दिन महाराज वापस आए इसलिए कि पेट खराब था। महाराज तो दो तीन बार गए ही उधर, फिर महाराज निवृत्त होके वापस गए। इसको दासी को बोला अब उसको निकालो बाथरूम में नहाओ। बाहर निकला, उसका क्या हाल होगा। उसको बोला अभी कुछ बनाना है, बोला नहीं। दूसरे दिन उसको कहा अब तो आइए, बोला अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तो ये बुद्धि हमारी राजा की रानी है, ये हमारा राज है शरीर, इसके राजा आत्मा है, तो इसकी बुद्धि जो है रानी है। वो संसार में भोग करना चाहती है तो बुलाती है किसी को, तो फिर कहाँ बैठना पड़ता है, टॉयलेट के नीचे, जो है फिर दोबारा नहीं आना चाहिए ना। तो असल में ये जन्म का इतना बड़ा कष्ट होता है, जन्म इतना बड़ा दुखदायी है। 100 जन्म पहले याद आते हैं जब बाल गर्भ में होता है बच्चा तब, और भगवान का अंगूठे जितना रूप देखता है परमात्मा का, और उसको प्रार्थना करता है, देखो मैं उल्टा लटका हुआ हूँ, भगवान हाथ जोड़े होते हैं, देखा है बच्चे के हाथ जोड़े होते हैं, और ये जगह जो उसकी होती है थोड़ी कहते हैं इसको चिन्ह, वो छाती पे लगी है, हाथ ऐसे होते हैं बच्चे के, देखा है बच्चे का जन्म, बहुत निम्रता का मूर्ति होता है, ऐसे प्रार्थना करता है मुझे यहाँ निकालो, मैं आपको याद करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, ये वचन दे के आता है भगवान को। और पीड़ा होती है बेचारे को, जन्म होते लेता है, रोता है आते हुए संसार में रोता है, और सब लोग खुश होके उसको चपक जाते हैं, उसको ऐसा चपकते हैं, वो सबको देखता है रोता है, देखता है रोता है, पता नहीं लगता है उसको क्या तकलीफ है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है, बड़ी परेशानी, स्कूल जाना नहीं जाता है, जबरदस्ती हम जाके उसको डब्बे में डाल के आते हैं, ऐसा बेचारा मजबूर हो जाता है जीवन भर। लेकिन 15-16 साल का होता है तब समझता है दुनिया चलती मुझसे है, ये सब दुनिया ऐसे नहीं है, उसका दिमाग घूम जाता है, किसने कितना उसके लिए किया है वो सब उसको भूल जाए, माँ ने कितना किया, बाप ने कितना किया, सब कुछ भूल जाता है।
तो आज ज्यादा लोग हैं इसलिए दोबारा बताऊं, लेकिन दो दिन से रोज बता रहा हूं। छोटे बच्चे देखो वो उससे पूछे, दो भाई होंगे ना घर में जाके माँ को चपकेंगे, क्या बोलेंगे? माँ मेरी है। दूसरा बोलेगा नहीं माँ मेरी है। अपन लड़ते हैं कि नहीं, माँ मेरी है मेरी है। हा? और बड़े होते हैं तब कहते माँ तेरी है ले जा। कितना बड़ा परिवर्तन आता है 30-40 लाख में साल में। माँ मेरी मेरी करके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चपटते हैं, ले जा एक महीना तेरे पास। कितना बड़ा ये माया। इसको देवहूति माता ने, देवहूति का अर्थ है जो भगवान को आवाहन करके अपने उदर में बुलाए बेटा बना सके, उसको देवहूति कहते हैं। उसने पूछा है कपिल देव से कि संसार के अंदर कैसे बच्चा जन्म लेता है और कैसे संसार के मोह में फंस जाता है। पूरा गर्भ गीता एक अध्याय पूरा है कि बेचारा वो तो किसी को कुछ नहीं जानता है, बड़ा पीड़ा भोगता है, भगवान को प्रार्थना करता है, लेकिन संसार में आने के बाद ऐसा मोह चारों ओर से उसको घेर लेता है कि भगवान से किया हुआ वचन ही उसको भूल जाता है। और मृत्यु कितना दुखदायी है, हमने आपको बताया था कि सबके कंधे के ऊपर एक यमराज का चित्रगुप्त नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आपको बताया था, क्या सीक्रेट फोटोग्राफर, वो सबकी अच्छी तरह से फोटो निकाल रहा है। और वो रील सारी रिएक्शन रीप्ले मृत्यु के समय होती है, तब लोग भयभीत हो जाते हैं। अंत समय बहुत लोगों को पीड़ा होती है, भयभीत होते हैं, मृत्यु बहुत, 100 के 1000 बिच्छू एक समय काटे इससे ज्यादा पीड़ा होती है। जब आत्मा शरीर से सूक्ष्म शरीर जब निकलता है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है, इसका अनुभव कोई किसी को बता नहीं सकता है ये दुख ये। और फिर बीमारी कितनी बड़ी भयानक है, और बुढ़ापा सबसे बड़ा दुखदायी है, ये भी आपको बताई थी एक कथा। बचपन में सब कुछ मुफ्त को खाने को मिलता है, बच्चे को कुछ नहीं, जवानी में मेहनत करके कमाना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। मजबूरी हो जाती है। ये जीवन तीन काल को देख लो, ऐसे तीन काल बदलते हैं। बचपन बेफिक्र है, सब कुछ अपने आप सब लोग खिलाते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। थोड़े बड़े हो गए तो फिर कमा के खाना पड़ेगा, और कमा के सब कुछ बना लो, लेकिन बूढ़े हो गए तो मांग के खाना पड़ेगा। तो दुखदायी है कि नहीं है बुढ़ापा। तो जन्म मृत्यु बार बार इस दुनिया में आना बहुत भयानक है, लेकिन अभी अनुभव किसी को हुआ नहीं है, इसलिए दुनिया में और भी भोग करने की भावना है। तो ये कथा हमारे को असल में शास्त्र हमको आईना दिखाते हैं। आईने में जैसे होता है आदमी वैसे दिखता है, वो कोई आईना किसी के साथ रियायत नहीं करता है। तो ऐसा शास्त्र हमारे को सत्य बताते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, और हमारे लिए हितकारी क्या है, और क्या हमारा नुकसान किसने है। अब देखेंगे अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हुए कि ये हमारा हानि करते हैं फिर भी हम करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। जैसे छोटी सी बात है, सिगरेट के ऊपर लिखा है कि तुम्हें कैंसर कर देगी, फिर भी उसको पीने वाले पीते हैं कि नहीं पीते, उसी के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे काम है जो हम जानते हैं कि हमारा बहुत इसमें नुकसान होगा, फिर भी हम करते हैं, क्यों करते हैं, ये कारण क्या है इसका, इसका क्या कारण है, जानते हुए भी करते हैं। एक अनजान में होता है, एक जानते हुए करते हैं, इसका कारण क्या है, आपका क्या, आपकी राय में क्या कारण है इसका। अज्ञानता, तो जानते कैसे, अज्ञानता तो नहीं होगी, जानता हूं फिर अज्ञान कैसे होगी। सही है, अज्ञानता सबसे बड़ा कारण अज्ञानता है। हम जानते हैं फिर भी करते हैं, इसका मतलब हमको ज्ञान है फिर भी करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। माया, आसक्ति, कर्म बंधन, भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा। बुद्धि का काम है निर्णय करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि जब कमजोर हो जाती है तो वो निर्णय नहीं कर पाती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब मन मनमानी करने लगता है। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, अगर ड्राइवर नशे में हो जाए तो स्टीयरिंग सीधे रास्ते में नहीं है तो खड्डे में गिरेगा ही ना। तो असल में ड्राइवर बुद्धि जो हमारी है वो जरा कमजोर हो गई है। बुद्धि को शक्ति कहां से मिलती है? बुद्धि का नेक्स्ट डोर नेबर आत्मा है, बुद्धि का पड़ोसी आत्मा है। अगर आत्मा का चिंतन होगा तो बुद्धि बलवान होगी, उसको कहते हैं आत्मबल, विल पावर जिसको कहते हैं आत्मबल। तो आत्मबल कहां से आता है? आत्मा से आता है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का, ममई अंश जीव लोके। भगवान कहते हैं मेरे अंश है जीव, लेकिन इसी श्लोक में थोड़ा गहराई में देखें तो फिर भगवान ने एक शब्द और जोड़ दिया, जीव भूत। जीव को भूत लगा है, जीव तो मेरा अंश है लेकिन इसको भूत लगा है। बोला भूत कौन सा है? बोला पांच भूतों का शरीर जिसके साथ मन लगा हुआ है, ये बड़ा भूत है, ये भूत लगा है। दो प्रकार के भूत भगवद गीता में है, एक ब्रह्म भूत है एक जीव भूत है। जो जीव भूत है वो संसार के बंधन में जानते हुए भी अपराध करते हैं, और जो ब्रह्म भूत है वो दुख सुख से ऊपर उठे हुए हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांचति। तो ब्रह्म भूत बनना है हमको, असल में ये शास्त्र की शिक्षा हमको ब्रह्म भूत के स्तर के ऊपर लाने के लिए, तभी भगवान की प्रेम से भक्ति हो सकती है। ब्रह्म भूत और जीव भूत, तो जीव किस काम से? भगवान काम से। तो असल में शक्ति कहां से आएगी? भगवान से आएगी। जीव में जब जब भगवान से संबंध स्थापित होगा, लाइन भगवान से जुड़ गई, तो आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, तो बुद्धि निर्णायक हो जाएगी, तो स्टीयरिंग मन वाला अपने आप सीधे रास्ते पे चलेगा, फिर गलत रास्ते पे जाने की इच्छा ही नहीं करेगा। लेकिन मन बहुत बलवान है, बहुत बलवान है मन। चार विशेषण अर्जुन ने मन के दिए हैं भगवद गीता में, असंग क्या चार विशेषण? अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन क्या प्रश्न बोलते? भगवान ने कहा मन को वश में करो, तो अर्जुन क्या बोलते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रम तस्याम न निघ्रम मने वायुरेव दुष्करम। क्या शब्द पहले का? चंचलम ही मन, मन बहुत चंचल है। चंचल का मतलब एक जगह नहीं टिकता है। तो मानो भगवान ने कहा तेरे बच्चे भी चंचल होते हैं, संभालते हो कि नहीं संभालते? सारा दिन उछल कूद करते हैं कि नहीं करते हैं? जिसके पास बच्चे चंचल होते हैं उसको पता लगता है कि उनको संभालना कितना मुश्किल है। तो मन उससे भी ज्यादा चंचल है। अच्छा, जब बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं तो पहले आप क्या करते हो? पहले टाफी देके काम चलाते हैं, चुप करके बैठो, लड्डू देते हैं। अभी भी चुप नहीं करते तब क्या करते? एक दे मार दे, सो गया, समझ है ना? तो असल में ऐसे मन को कभी झापड़ मारनी पड़ती है तब जाके सोता है, बच्चे से भी ज्यादा चंचल है। झापड़ देनी पड़ती है अच्छी तरह से, धाकर माँ कोई होती है ना, बच्चे पहली एक झाड़ देती है, बिल्कुल ऊपर नहीं उठेगा, उधर रोको के सो जाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे कि बदमाश मन को रोज 100 जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि यही हमारे को इस संसार में दुख देने वाला है। मन हमारा शत्रु है सबसे बड़ा, अगर हमारे वश में नहीं है तो, और अगर वश में है तो बड़ा से बड़ा मित्र है। तो हमारा बुद्धि निर्णायक होनी चाहिए। मन मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, वो तो ड्राइवर है बेचारा। वो ड्राइवर नहीं, वो तो बेचारा, वो तो केवल स्टीयरिंग है, उसको चलाने वाला दूसरा होना चाहिए। तो ये मन के कारण सारे ही, मन चंचल है एक, दूसरा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी। प्रमाथी किसको कहते हैं? मंथन करना समझते हैं? मंथन करते हैं जब आप, तो कोई चीज आपको दिखती है मिक्सी के अंदर कहाँ घूम रही है, तो मन का पता नहीं लगता है कि कहाँ है। अभी अभी यहाँ हम बैठे हैं, मन पता नहीं कहाँ, इंडिया बॉम्बे भी घूम के आ जाएगा, अमेरिका भी घूम के आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम के। मन परमाथी का मतलब एक जगह होता नहीं है, हमको हाथ आए तो पकड़े ना, ये पंखा है जैसे चल रहा है तो पर भी गिनना मुश्किल हो जाते हैं, गोल दिखता है तो बटन बंद कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। बोलो परमाथी है तो इसका बटन बंद कर दो। बोलो बलवद, बड़ा शक्तिशाली है, हम हाथ लगाते हैं तो करंट मारता है, नहीं मानता है, तुम अपना बल बढ़ा दो। बोला दृढ़म, चौथा बोला दृढ़म का मतलब एक्सीलेट है, मतलब जैसे जिद करता है कोई, जिद्दी है मन, बहुत जिद्दी है। तो चार ये मन के दोष हैं, चंचल। पतंजलि ने तो योग शास्त्र में लिखा है कि मन बंदर जैसा है। बंदर चंचल होता है कि चुप रख बैठता है? बंदर चंचल है कि नहीं है? अब चंचल बंदर को कोई शराब पिला दे तो कैसा हवा होगा बंदर का? और शराब पिए हुए बंदर को एक बिच्छू काटे तो क्या मजा आएगा? और फिर उसकी पूंछ में कोई कांटे वाली झाड़ी बांध दो तो उस बंदर का क्या हाल होगा? ऐसे हमारा मन पहले ही बंदर की तरह चंचल, और उसको अहंकार का नशा चढ़ा है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं। और ईर्ष्या के बिच्छू ने काट के रखा है एनवियसनेस के, और पूंछ के अंदर लोभ के कांटा लटका हुआ है, तो अब तो कूदेगा ना, कहां बैठने वाला है? तो ऐसे मन को कैसे वश में किया जाए? अर्जुन ने तो कहा भगवान बड़े बुद्धिमान है, उत्तर कैसा भगवान ने दिया है ये सीखना चाहिए। गुरुजनों को, माता पिता को, बच्चे कहेंगे ये हमसे नहीं होगा, तो आपको कहना चाहिए बेटा तुम ठीक कह रहे, ये बहुत मुश्किल है, कम से कम उसकी हाँ में हाँ थोड़ी देर मिलाना चाहिए, तब वो आपकी बात सुनेगा। अब बोले कैसे नहीं कर सकते हो, तो कभी नहीं सुनेगा, उसका दिमाग के दरवाजे ही बंद कर देगा। भगवान ने उत्तर क्या दिया? असंख्यम महाबाहो मनोजन निग्रह। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, बहुत मुश्किल है मन को वश में करने का। अर्जुन तो खुश हो गया कि भगवान को मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा असंख्यम महाबाहो मनोजन निग्रह अचलम, परंतु इसको वश में करने का एक साधन, तब बोलता है बताओ, तब तो बोलेगा ना, एक है साधन तो आदमी की इच्छा करेगी। तो मन को कैसे वश में किया जाए? बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण सगृह्यते। दो चीजों से हो सकता है, एक अभ्यास करो, एक वैराग की वृत्ति जीवन में बनाओ, तो तेरा मन वश में आ जाएगा। तो ये अभ्यास क्या है कि हम गलत काम से बचे, उसके लिए अभ्यास क्या करना चाहिए? असल में अभ्यास है भगवान के नाम को रोज जपना, ये है अभ्यास, इसको अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास का मतलब वही चीज बार बार करना, रोज नेम से। भगवान के तो अनंत नाम है, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति, हर एक नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति भर के रखी। कोई भी नाम जो आपको शास्त्र से, साधु से मिला है, और नहीं तो ये सर्वमानन्य शास्त्रों का सार है कि इसको पकड़ के बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको अभ्यास बोलते हैं। महात्मा के पास एक आदमी आता था कथा सुनने के लिए, रोज आता था, लेकिन कारोबार उसका बढ़ गया तो आने में उसको 15 दिन लग गया। अगली बार महीने के बाद आया, महात्मा ने कहा भाई आप रोज कथा पे आते थे, अच्छे आदमी हो, कथा आना बंद क्यों? महाराज काम इतना बढ़ गया है कि कोठियां चारों ओर बढ़ गई है, काम वाला आदमी नहीं मिलता है, कोई आदमी मिल जाए, काम आदमी मैं दिला देता हूँ आपको, आपका सारा काम कर लेगा, लेकिन एक उसके ऊपर कंडीशन है, शर्त एक है कि उसको काम नहीं दोगे तो तुम्हें खाएगा। बोला महाराज इतना काम है कि 50 आदमी पूरे नहीं पड़ते हैं, 100 आदमी पूरे नहीं पड़ते हैं, एक आदमी क्या करेगा, दे दीजिए। महाराज ने तो अपने योग बल से एक उसको दे दिया जिन, और जिन उसको दे दिया, कहा कि तुम सुबह उठ के कहा ये काम कर आओ, क्या काम करके आओ, वो देख के आओ, गोदाम देख के आओ, बैंक देख के आओ, नाश्ते तक सब काम पूरा हो गया। बोला काम दो, बोला काम नहीं है, बोला तेरे को खाऊंगा। ये तो बेचारा भागता हुआ आया, महाराज ये कौन सा भूत हमारे पीछे लगा दिया, सारे काम खत्म कर दिए। बोला मैंने आपको कहा था ना। बोला क्या करूं फिर? बोला ऐसे करो, उसको हाथ में दे दो माला, और उसको बोलो इधर से शुरू करे हरे कृष्णा, और जब यहाँ पहुंचे इसके ऊपर से मत जाना, यहाँ से फिर दोबारा शुरू कर देना, इधर से जाओ इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, और जब काम हो तब बुलाया करो, नहीं तो माला उसके हाथ में दे दो। बोला ये क्या? बोला ये तुम्हारा मन इस जिन की तरह है, जब काम नहीं होता है तो तेरे को परेशान करता है, इसलिए इसको एक अभ्यास में लगा दो, जब इसको आगे पीछे घूमता रहेगा तो कम से कम तुम्हारे को परेशान नहीं करेगा। ये तो पुरानी अंग्रेजी कहानी है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर है, खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए ये बहुत आसान इधर से इसको ये नेम है, इसको सुमेरु बोलते हैं, इसके ऊपर से जाना नहीं होता है, माला जपनी है तो इस तरफ से पूरी हो गई, इधर पहुंच गए लास्ट में तो यहाँ इसको फर्स्ट कर देते हैं, तो ये तो आगे पीछे घूमते रहेगा मन, तो फिर कहीं जाएगा नहीं, इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास अगर जीवन में एक 7 मिनट रोज के 7 मिनट मुश्किल से लगते हैं एक माला जपने में, कितने लगते हैं, और रोज ब्रश करने में दांतों के 7 मिनट लगते हैं, और सब माँ जबरदस्ती अपने बच्चे को सुबह उठा के मुर्गे की तरह से पकड़ के सीधा सेंक पे खड़ा करेगी और पेस्ट लगा के सीधा ब्रश मुंह में डालेगी, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, पक्का है ना, क्यों करते हैं, दांत साफ होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ये ना अंदर में कितना कचरा पड़ा है उसको साफ करने के लिए कोई साधन है, कोई पेस्ट बनी है क्या, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये जो बुराइयां कितनों के लिए कचरा पड़ा है उसको निकालने के लिए कोई पेस्ट बुश है क्या, नहीं है, तो ये अच्छा झाड़ू है, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, ये मंदिर में झाड़ू लगाना है, भगवान का नाम जपना, चेतो दर्पण मार्जनम, कचरा जितना है उसको धो के साफ कर देगा, तो 7 मिनट अगर ब्रश करने में लगते हैं तो 7 मिनट एक माला जपने का अभ्यास करो, देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये तो भगवान, फिर ये भगवान की कृपा से आत्मा बलवान हो जाएगा तो बुद्धि निर्णायक हो जाएगी, तो फिर दूसरा काम करना आसान हो जाएगा, वैराग्यना, वैराग का मतलब ये है कि जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाने वाली हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे नशा करना बहुत खराब है कि नहीं, कोई आदमी नशे को अच्छा मानता है क्या, नहीं मानता है ना, तो उसको छोड़ना चाहिए, हमारे पास शक्ति नहीं है, ये ना ये अभ्यास करेंगे तो शक्ति आ जाएगी, तो आदमी नशा छोड़ दे, तो एक नशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नशा जब तक रहेगा तब तक हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, तपस्या का मतलब है अपनी इच्छा से 1 घंटा बैठ के कथा भी नहीं सुन पाएंगे, थोड़ी सी सिगरेट पीने की आदत होगी तो भी थोड़ी देर बाद बाहर जाके फिर वापस आएंगे, तो नशा छोड़ना चाहिए ना, ये वैराग है, वैराग क्यों ये है कि हमारे को हानिकारक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बुरी हैं हमारे लिए, हम नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए उसके लिए वैराग जीवन मन ही उसका कारण है, तो इसलिए हमारे को अभ्यास पहले शुरू करना चाहिए, तो भगवान की शक्ति से आत्मा बलवान हो जाएगी, हमारा विल पावर बढ़ जाएगा, फिर मन की मस्ती नहीं हो पाएगी और तब हम वैराग के स्तर पे आ सकते हैं, पहले वैराग नहीं होगा, पहले अभ्यास होगा तब वैराग होगा, तो ये एक छोटा सा काम अगर आप करना शुरू कर दें, जो करते हैं वो अच्छी तरह से करें और जो किसी कारण से अभी तक नहीं कर रहे हैं ये अगर करना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, जहां आपको थोड़ा सा दुर्बलता होती थी एकदम बल हो जाएगा, मर ये तो अर्जुन को भगवान ने कहा है, ये तो तुम्हारी दुर्बलता है, मन की दुर्बलता है, ये तुम्हारी मन की दुर्बलता कैसे खत्म होगी, भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो उसकी दुर्बलता खत्म हुई कि नहीं, दौर्बल्यम कार्पण्य दोष उपहना, क्या इसका दौर्बल्यम का क्या श्लोक है, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मेतम उपस्थितम मनार्य जिष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन क्लेव्यम मा समगम पात नैतृत्व उत्पद्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तिस्तु परम तपा, छोड़ दो इस दुर्बलता हृदय की को, तुम्हारी ये कमजोरी है कि तुम गलत काम को सही मान के कर रहे हो, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, तुम्हारे मन की कमजोरी है, इसलिए आत्मा के बल को बढ़ाओ, और आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए भगवान की सहारे की जरूरत है, और भगवान के सहारे का सरल साधन है अभ्यास करना, और अभ्यास में भगवान के नाम को जपने का अभ्यास करना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, और कुछ लोग आज पहली बार यहाँ ये इस्कान के केंद्र में आए हैं, उन लोगों को हम चाहेंगे कि वो कुछ हमारे वॉलंटियर के साथ मिलें, कुछ उनके लिए उपहार और प्रसाद भी यहाँ पाना है आपको, और किसी के मन में ये अभ्यास करने की इच्छा हुई हो तो एक माला यहाँ से हम आपको दे देंगे, आप उसको जप के अपने जीवन में परिवर्तन करके देख लीजिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न है किसी, आप बोलो बेटी।
हम लोग जो आदमी है भगवान को बहुत भजते हैं, पर उन्हें कष्ट भी इतनी आती है, और जो लोग भगवान को नहीं भजते, कभी भगवान से सिर भी नहीं झुकाते, कभी भगवान का दिया नहीं जलाते, उन लोगों के पास सुख की परम सीमा जो कही जाती है वो होती है। तो ये ऐसा क्यों?
इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, अच्छे आदमी से बुरा व्यवहार क्यों होता है। एक बहुत ये एक दिन का पूरा कोर्स है उसके ऊपर ये भक्त लोग स्लाइड शो दिखा के इसको सिद्ध करते हैं कि अच्छे आदमी के साथ कठिनाई क्यों होती है और बुरे आदमी को सुख क्यों मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा पूरा सब्जेक्ट मैटर है, एक 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 एक, एक, एक दो घंटे का पूरा फार्मूला है। तो कभी भक्त इसको यहाँ करेंगे तो आप उसको बहुत गंभीरता से सुन लीजिएगा, लेकिन हमारा सिर्फ सरल उपाय ये है भगवान की भक्ति करने से हमको संसार का सुख मिलेगा, ये हमारी मिसकैलकुलेशन है, ये हमारी गलत कैलकुलेशन है। भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान मिलेगा, हमने उसको भौतिक सुख समझ लिया है, ये हमारी पहली मिसकैलकुलेशन है। और जो सुख और दुख है, प्रहलाद महाराज कहते हैं हमारे कर्मों के हमने खुद पहले कटे कर रखे हैं। प्रहलाद महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं कि दुख के लिए दुनिया में कोई भी प्रयास नहीं करता, न मंदिर दुख के लिए जाता है, न भगवान को प्रार्थना करता है कि हमें दुख आए, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं वो दुख तुम्हारे अपने कर्म के द्वारा खरीद किए हुए हैं, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं। ऐसे सुख भी तुमने अपने कर्मों के स्वयं खरीद के रखे हैं, इसलिए वो भी अपने आप आते हैं। ये मत समझो कि अभी तुमने भक्ति की है इसलिए सुख आ रहे हैं। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ये भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और भगवान के भक्तों में तो बहुत प्रिय भक्त भगवद गीता सुनते हैं, तो पांडव भगवान के बहुत प्रिय भक्त है ना, उनको कितना कष्ट आया, कितना कष्ट उनको आया है। अच्छा, इसको बहुत सरलता से ऐसे समझ लो, आपके बच्चे को रोज सुबह उठा के जबरदस्ती स्कूल क्यों भेजते हैं? वो तो जाना नहीं चाहता है, रोता है, क्यों भेजते हैं? पढ़ेगा तो क्या होगा? अच्छा आदमी बनेगा, सुखी रहेगा जिंदगी में, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे को नहीं करते। ऐसे जिनसे भगवान का थोड़ा ज्यादा प्रेम हो जाता है उनको अपने बच्चे समझ के थोड़ा सा तपा देते हैं दुनिया में ताकि चमके। जो तपता है वो चमकता है, तो जिस सोने को आग में तपाया जाता है वही चमकता है। तो भगवान अपने भक्तों को तपा के, तपस्या करा के चमकाते हैं। अभी आज पांडवों को पूरी दुनिया याद कर रही है ना, क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान के, संसार में दुख तो अपने सबको आते हैं लेकिन भगवान को भूला नहीं कभी, सबसे बड़ी बात ये है। तो भगवान अपने भक्तों को कभी परीक्षा से गुजारे तो वो उनको भला करने के लिए, जैसे माँ बच्चे को कभी रोटी नहीं देती है तो बच्चे के भलाई के लिए नहीं देती है। भाई जुकाम बच्चे को और आइसक्रीम मांगे तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो ऐसे हमारे को भौतिक रोग है और फिर हम भोग मांगे भगवान नहीं दे तो बुद्धि मानी है ना। तो एक तो बहुत अच्छा चेतन महाप्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अमृत छाड़ी दिख विष मांगे, ये मूर्ख अमृत मैं हूं मुझे छोड़ के दुनिया के विष मांग रहे हैं, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं कह के लिए इनको विष दूं, मैं तो अमृत ही दूंगा। लेकिन अमृत अगर देना है तो उसके लिए थोड़ी परीक्षा, थोड़ा सा परिश्रम उठाना पड़े। इसलिए कुंती महारानी का प्रार्थना को ध्यान देना चाहिए, कहती है भगवान जो पहले दुख आए ना ये बार बार हमको आए। अरे माँ ऐसा क्यों मांग रही है? बुआ तुम क्या मांग रही है, दुख मांग रही है? बोले जब दुख आते हैं तो तुम्हारी याद आते हैं और तुम्हारा दर्शन हो जाता है, और अब हमारे को राजपाट का सुख मिला है और आप छोड़ के जा रहे हो तो इस राजपाट को क्या करें आपके बगैर। तो कुंती महारानी क्या कह रही है असल में कि असल में आपको देखने की प्राइस दुख है। अगर आपको देखना है, आपको मिलना है तो उसके लिए संसार के अंदर थोड़ी सी तपस्या से गुजरना अच्छा है। जीवन में ऊपर चढ़ाव उतराव सब के आते हैं, कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसके जीवन में चढ़ाव उतराव नहीं है। वह बड़े बड़े भक्तों को देखा है, बड़ा कष्ट भोगा है लोगों ने, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूले हैं। तो उनका नाम दुनिया में याद किया जा रहा है, प्रहलाद को उसके बाप ने कितना संकट दिया, आज उसका नाम दुनिया में जाग रहा है। और नहीं तो कितने राजा महाराजा मर गए, किसी को नाम भी याद नहीं है। तो सुख वालों को कोई याद नहीं करता है, दुख वालों सबके दिल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और वो भगवान के भक्तों को दुख से कोई विचलित नहीं कर सकता है। और भगवान उनका धन है, इसलिए अंत में वो ही विजयी होते हैं संसार। बाकी एक कथा उस दिन आपके घर में हमने बताई थी, एक आदमी बहुत रोज भगवान के मंदिर में जाए, और दूसरा पड़ोसी उसका कभी मंदिर तो नहीं जाए, गालियां भी दे और फिर भी बहुत सुखी। और एक दिन एक ही रास्ते से दोनों जा रहे थे, आगे वो बदमाश जा रहा था, उसको इतना बड़ा धन का थैली मिला, हीरे मोती मिले, और ये पीछे जा रहा था साधु भगवान का भक्त, उसको इतना बड़ा कांटा पांव में लगा जो दूसरी तरफ निकला। तो दोनों बहुत एक खुश हो गया कि धन मिला, और वो तो पापी अपराधी था, और एक साधु था उसके पांव में कांटा लगा। दोनों ने जाके भृगु ज्योतिष से पूछा कि हमारे जीवन जीवनी तो बताओ क्या है। बोला आज जिसको ये सोने की हीरे मोती की थैली मिली, इसको आज राज मिलना था, इसको आज राजा अभिषेक होना था, लेकिन इसने इतना पाप अपराध किया कि केवल इतने सोने मिलके इसका ये सारा पुण्य खत्म कर दिया। और ये बेचारा साधु, इसको आज फांसी पे चढ़ना था, लेकिन आज इसने अपने इतनी भगवान की प्रार्थना की कि भगवान ने फांसी को बदल के एक कांटे की सूली बना दी। तो ऐसे भगवान भक्तों को थोड़े में छोड़ देता है, और बड़े से बड़े का सब कुछ चला जाता है। तो ये हमको समझना बहुत मुश्किल है, कैसे भगवान करते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है। ये भी बहुत पुरानी कथा सुनी होगी कि राजा का मंत्री भगवान का इतना भक्त था, कुछ भी हो जाए बोला भगवान की इच्छा। एक दिन राजा की उंगली कट गई, राजा ने बोला देखो मेरी उंगली कट गई, बोले भगवान की इच्छा, बोला इसमें भगवान की इच्छा, मुझे पीड़ा हो रही, डालो इसको जेल में। वो मंत्री को जेल में डाल दिया। राजा चला गया शिकार करने, और किसी डाकू ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसको ले जाके बलि चढ़ाने के लिए देवी के सामने ले गए। जब बलि के लिए ले गए तो देखा हाथ कटा हुआ, बोला कटा हुआ तो बलि चढ़ नहीं सकता है, छोड़ दिया। राजा वापस आया, बोला मंत्री को बाहर निकालो। मंत्री तुमने ठीक कहा, हाथ कटा भगवान की कृपा है। बोला क्या हुआ महाराज? बोला मेरे को बलि नहीं चढ़ाया, छोड़ दिया क्योंकि हाथ कटा हुआ था। बोला ये तो समझ में आया, लेकिन मैंने आपको जेल में डाला, इसमें भगवान की क्या अच्छा क्या किया? बोला महाराज आप जेल में नहीं डालते, मैं आपके साथ होता मैं बलि चढ़ जाता। तो मेरे को बलि चढ़ना पड़ता, इसलिए इसमें भी भगवान की भलाई है। कैसे भगवान करते हैं हमको समझ में नहीं आता। एक ड्रामा करते हैं कभी भक्त, कभी यहाँ करेंगे अगली बार। गोपाल भगवान का एक भक्त था, गोपाल दास, रोज भगवान खड़ा हुआ देखे तो एक दिन कहा आप खड़े खड़े थक गए हो, आप जाओ थोड़ा घूम के आओ ग्वाल बालों के संग, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। भगवान का ये बहुत मुश्किल काम है, तुम यहाँ खड़ा होगे क्या करोगे, यहाँ चुप रहना पड़ता है। बोला नहीं नहीं आप जाओ जरा, मेरे को अच्छा नहीं लगता रोज आप यही खड़े होते हो। तो बोला कल सुबह आना। सुबह ये आ गया, भगवान ने अपने कपड़े दे दिए, बोला तुम ऐसे खड़े रहो, बोलना बिल्कुल मत। भगवान तो घूमने गए, ये खड़ा है। एक आदमी आया थ्री पीस पहना हुआ, बड़ा बैग खोला और 10,000 रुपया रखा। बोला भगवान ये आपको भेंट चढ़ाता हूँ, आपका दिया हुआ, और आज मैं जा रहा हूँ, एक मेरे को टेंडर पास कराना है, उसमें मेरा कुछ फायदा हो जाएगा और चढ़ाऊंगा। ऐसे बोलते बोलते जल्दी में भागता हुआ बड़ा पर्स अपना वहीं भूल गया। 10,000 तो चढ़ाए लेकिन बाकी 50,000 का पर्स भी वहां भूल गया और चला गया बाहर भागता और चला गया। इतनी देर में एक गरीब आया, बोला भगवान मैं आपका दास आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है भोग लेने के लिए, कुछ धन हो तो मैं अच्छा सा फल फूल लाके आपको चढ़ाऊं, लड़की की शादी करानी है आपकी सेवा में लगाना है, लड़की अपने घर जाए। इतनी देर आंखें खोली तो आगे इतना बड़ा पर्स पैसों का पड़ा है। बोला भगवान तत्काल आपने हमारी सुन ली, उठाया और गया घर। और जाके उसने तो अपनी लड़की का विवाह भी किया, भगवान को भोग भी लगा दिया। तब एक तीसरा आया, वो बोला कल मेरे को जहाज में जाना है पानी के, बहुत दूर का सफर है, भगवान मेरी यात्रा सफल हो, मेरी सुरक्षा का आपके ऊपर भार रखता हूँ। इतनी देर में पहला वाला पुलिस को लेके आया, पुलिस को बोला यही खड़ा है, इसने पैसा उठाया, पुलिस ले जाके इसको अंदर डाला। ये तो खड़ा बोल रहा देखा, ये तो सब अन्याय हो रहा है यहाँ, लेकिन बोला नहीं। तब तक भगवान आ गए, बोला लो ये ले तेरा मुकुट, ये क्या हो रहा है तेरे यहाँ, एक का पैसा दूसरा लेता है तीसरा जेल में जाता। भगवान जब खड़े हो गए तो बोला क्या हुआ बताओ। बोला पैसा ऐसे पहला भूल गया। बोला मैंने उसको भूलवाया ताकि वो जाके लोगों को शराब पिला के ठीका लेता, अपना भी नुकसान करता, मेरा भी नुकसान करता, और भले काम में इसका मैंने पैसा लगाना था इसलिए उस गरीब को दे दिया, अच्छे काम में लग गया, तो ये पाप मेरे पास आए फिर भी पाप का काम कहे, मैंने उसको पाप से बचा दिया और दूसरे का काम कर दिया। बोला ये दोनों ठीक है लेकिन तीसरा क्यों जेल में गया। बोला उसका जहाज डूबा है जाके देखो अखबार में, वो जेल में नहीं होता तो जहाज डूब जाता, मेरे को उसका भला करना था मैंने इसको ऐसे किया। कैसे करता है भगवान हमको समझ में नहीं आता है, हम दूर तक नहीं देख सकते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। ये मालाएं कुछ आई है, कोई एक तो ग्राहक होना चाहिए मेरा आज माला आज से जपने वाला। हरे कृष्ण
बैठा
आइए सुभद्रा मास्टर जी, आपको आज माला देने का हमने वायदा किया था, आप आइए।